नमस्कार भारत, 18 दिसंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति ने कहा, पाकिस्तान में चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले मदरसे बंद किए जाएं।
600 दियोबंदी मदरसास फंडेड विद गल्फ स्टेट मनी टीच इंटॉलरेंस।
इस्लामिक स्टेट के धन के स्रोत पर लगेगी रोक, सुरक्षा परिषद ने पास किया एक अहम प्रस्ताव।
As Daesh and other terrorist groups disseminate their hateful propaganda and ratchet up murderous attacks.
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच तनातनी नए दौर में, आपने अरुण जेटली को घेरा तो अरुण जेटली ने आपको झूठा कहा। होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। अमरीकी संसद की एक अहम समिति ने पाकिस्तानी सरकार से उन मदरसों को बंद करने की मांग की है जो चरमपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। समिति ने पाकिस्तान को लेकर अमरीकी नीति में बदलाव का भी सुझाव दिया है। कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष एड रॉयस ने कहा कि खाड़ी देशों से आए पैसे से चल रहे पाकिस्तान के देवबंदी मदरसे नफरत का ऐसा पैगाम फैला रहे हैं जिससे वहां आने वालों का चरमपंथ की तरफ रुझान बढ़ता है। यूरोपीय नेताओं ने माना है कि प्रवासी संकट से निपटने में वो तत्परता नहीं दिखा पाए। ब्रसेल्स में एक शिखर बैठक में उन्होंने संघ की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तेजी से कदम उठाने पर सहमति जताई है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने कहा कि आवाजाही की स्वतंत्रता समेत यूरोपीय समेत के मूल सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, क्योंकि इसके बिना हम राजनीतिक समुदाय को नाकाम कर देंगे और उससे कहीं बड़ा असर होगा सीमा मुक्त शेंगेन समझौते को खत्म करना। आज रात हम कुछ ज्यादा आशावान हो सकते हैं क्योंकि सभी नेता शेंगेन को सुरक्षित रखने पर सहमत हैं। इस सिलसिले में हम यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं की हिफाजत के लिए यूरोपीय संघ के प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हैं। ये थे डोनाल्ड टस्क के शब्द। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों ने आम राय से एक प्रस्ताव मंजूर किया है जिसका मकसद तथा कथित इस्लामिक स्टेट की आर्थिक मदद के स्रोतों को रोकना है। प्रस्ताव में ऐसे कदम उठाने की अपील की गई है ताकि आईएस को तेल और प्राचीन वस्तुओं की तस्करी करने से रोका जा सके। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी शहर सैन बर्नार्डिनो में हालिया गोलीबारी में शामिल दंपत्ति के एक दोस्त एनरिक मार्केज को गिरफ्तार कर उस पर आतंकवादी अपराध की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप तय किए गए हैं। मार्केज पर हमले में इस्तेमाल राइफलें और वो विस्फोटक सामग्री खरीदने का आरोप है जो पाइप बम बनाने में इस्तेमाल की गई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो विपक्ष के हथकंडों से परेशान ना हों। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कल रात उन्होंने अपने निवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक में ये बात कही। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब आम आदमी पार्टी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। साथ ही कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के चलते शीतकालीन सत्र में संसद ठीक से नहीं चल रही है। और संयुक्त राष्ट्र ने इस साल के लिए अपना मानव विकास सूचकांक जारी कर दिया है जिसके मुताबिक नॉर्वे रहने के लिए सबसे अच्छा देश है जबकि भारत को इस सूची में 130वें स्थान पर रखा गया है। बीबीसी समाचार।
सभी श्रोताओं को पंकज प्रियदर्शी का नमस्कार। आज है 18 दिसंबर दिन शुक्रवार और आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमेरिकी कांग्रेस की एक अहम समिति ने पाकिस्तानी सरकार से उन मदरसों को बंद करने की मांग की है जो चरमपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। समिति ने पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी नीति में बदलाव का सुझाव भी दिया है। पूरी रिपोर्ट के साथ हैं वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय।
सैन बर्नार्डिनो में हुए चरमपंथी हमले के कुछ ही हफ्तों बाद अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों पर कांग्रेस में हुई इस बहस में पाकिस्तान में चल रहे कई मदरसों को चरमपंथ के जड़ की तरह पेश किया गया। प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष एड रॉयस का कहना था कि इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है कि सैन बर्नार्डिनो की हमलावरों में से एक ताशफीन मलिक ऐसे ही पाकिस्तानी मदरसे में पढ़ी जहां एक खास तरह की कट्टरपंथी बातें सिखाई जाती हैं।
600 दियोबंदी मदरसास फंडेड विद गल्फ स्टेट मनी टीच इनटॉलरेंट हेटफुल रेटोरिक That inspires the foot soldiers of jihadists.
उनका कहना था कि खाड़ी के देशों से आए पैसे से चल रहे पाकिस्तान के 600 देवबंदी मदरसे नफरत का ऐसा पैगाम फैला रहे हैं जिससे वहां आने वालों का आतंकवाद की तरफ रुझान बढ़ता है। उन्होंने उन मदरसों को फौरन बंद करने की मांग की। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पाकिस्तान पेशावर के स्कूली बच्चों पर हुए चरमपंथी हमले की बरसी मना रहा है और अमेरिका के कई हलकों में चरमपंथ के खिलाफ पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई की तारीफ भी हुई है। एड रॉयस का कहना था कि वो पाकिस्तान के साथ एक मजबूत साझेदारी के हक में हैं, लेकिन अमरीकी नीति में बड़े बदलाव की जरूरत है। उनका कहना था कि नई नीति के तहत एक बात ये हो सकती है कि जो पाकिस्तानी अधिकारी आतंकवादी गुटों के साथ संपर्क रखते हैं उन पर वित्तीय प्रतिबंध लगे और उनके कहीं आने जाने पर रोक लगे।
The US and Pakistan cannot have a true strategic partnership until Pakistan security services cuts.
उनका कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका सही मायने में तब तक सामरिक साझेदार नहीं बन सकते जब तक पाकिस्तानी सुरक्षा बल सभी आतंकवादी गुटों से अपना संपर्क नहीं खत्म करते। समिति के सभी सदस्यों ने पाकिस्तान की नीतियों की खासी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें हक्कानी नेटवर्क और लश्करे तैयबा समेत सभी चरमपंथी गुटों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। कई सदस्यों ने पाकिस्तान के बढ़ते परमाणु हथियारों पर भी गहरी चिंता जताई और इन हथियारों के गलत हाथों खासतौर से अलकायदा और दूसरे चरमपंथी गुटों तक पहुंचने का डर जताया। समिति के सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर अमेरिका के खास दूत रिचर्ड ऑल्सन का कहना था कि पिछले 1.5 सालों में पाकिस्तान की नीति में कई बदलाव आए हैं और आतंकवाद का सामना करते हुए उनके 2000 सैनिकों और हजारों नागरिकों की जान गई है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया।
While we do not always see eye to eye on every issue, our relationship with Pakistan is vital to the national security of the United States.
ऑल्सन कह रहे थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कई मामलों पर मतभेद हैं, लेकिन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाए रखना अहम है। ऑल्सन का कहना था कि पाकिस्तान ने लश्करे तैयबा पर भी प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अभी और करने की जरूरत है। उनका कहना था कि क्षेत्र में शांति बनाने के लिए और खासतौर से अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने में पाकिस्तान एक सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान के बढ़ते परमाणु हथियारों पर उन्होंने भी चिंता जताई।
We are concerned that a conventional conflict in South Asia could escalate to include nuclear use.
उनका कहना था कि हमें इस बात का डर है कि इन हथियारों की वजह से दक्षिण पश्चिम एशिया में एक पारंपरिक युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है और इस मामले पर हम उच्च स्तर पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को हथियार और अन्य आर्थिक मदद देने के लिए प्रशासन को कांग्रेस की मंजूरी लेनी होती है और इस तरह के बहस प्रशासन पर खासा दबाव डालते हैं, लेकिन विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि फिलहाल उनकी पाकिस्तान नीति में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी, वॉशिंगटन।
अमरीकी कांग्रेस की एक अहम समिति की मांग ये थी वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 स्थायी और अस्थायी सदस्यों ने अपने को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी गुट के आर्थिक स्रोत को रोकने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इस प्रस्ताव को अमरीका और रूस ने मिलकर पेश किया था। ऐसा ही एक प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में फरवरी में भी पास हुआ था, लेकिन राजनयिकों का कहना है कि इसका नियमित रूप से उल्लंघन हो रहा था। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
इस्लामिक स्टेट या दाएश को तबाह करने के मकसद से उसके धन के स्रोतों को बंद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों के वित्त मंत्रियों ने पहली बार एक ऐतिहासिक बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया। ये प्रस्ताव 1999 के उस प्रस्ताव पर आधारित है जिसमें चरमपंथी गुट अलकायदा को निशाना बनाया गया था। अब उस प्रस्ताव के बाद बनाई गई अलकायदा प्रतिबंध समिति में दाएश या इस्लामिक स्टेट का नाम भी जोड़ दिया गया है। सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने दाएश के धन को रोकने के लिए और कदम उठाए जाने की मांग की।
As Daesh and other terrorist groups disseminate their hateful propaganda and ratchet up murderous attacks, we must join forces to prevent them from acquiring.
जहां दाएश और अन्य आतंकी गुट नफरत फैला रहे हैं और नरसंहार कर रहे हैं। हमें साथ मिलकर उनको मिलने वाले धन को रोकना होगा, जिससे आगे होने वाले नुकसान को रोका जा सके। दाएश जैसे गुट विश्व की वित्तीय प्रणाली में मौजूद खामियों का लाभ उठाकर धन इकट्ठा कर रहे हैं। हमने कई मामलों में सुधार किया है, लेकिन अभी और सुधार किया जाना बाकी है, जिससे दाएश जैसे गुटों के धन पर रोक लगाई जा सके। ये थे बान की मून के शब्द। इस प्रस्ताव में विश्व भर के देशों से आग्रह किया गया है कि इस्लामिक स्टेट को पहुंचने वाले धन को रोकने के लिए तेजी से और निर्णायक कदम उठाए जाएं। माना जाता है कि दाएश या इस्लामिक स्टेट विश्व का सबसे धनी आतंकी गुट है। एक शोध के अनुसार दाएश की एक महीने की आमदनी 8 करोड़ डॉलर के लगभग है। दाएश की आमदनी के अहम स्रोतों में सीरिया और इराक में उसको करीब 50% धन उसके कब्जे वाले इलाकों में टैक्स और जमीन और संपत्ति पर कब्जे से आता है। दाएश तेल की तस्करी से 43% धन इकट्ठा करता है और अन्य नशीले पदार्थों और सांस्कृतिक धरोहरों की तस्करी और विभिन्न लोगों द्वारा चंदे से भी वो धन इकट्ठा करता है। दाएश के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये प्रस्ताव अमरीका और रूस द्वारा लाया गया था। अमरीकी वित्त मंत्री जैक ल्यू ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हुए कहा,
ISIL is the most dangerous manifestation of this new threat.
आइसिल नए प्रकार के आतंकी गुटों में सबसे खतरनाक गुट है। हम संयुक्त राष्ट्र और अपने साथियों के साथ मिलकर आइसिल से कुछ समय से लड़ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आइसिल के खिलाफ लड़ाई में सबसे अहम ये है कि उसको वित्तीय प्रणाली से अलग थलग करके उसे बिल्कुल निष्क्रिय बना दिया जाए, और ये एक चुनौती है। ये थे अमरीकी वित्त मंत्री जैक ल्यू के शब्द। इस नए प्रस्ताव के तहत अगर कोई व्यक्ति गुट या संस्था दाएश या आइसिस को समर्थन देती है तो उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाएगा, उसके बैंक खाते और संपत्ति जब्त कर ली जाएंगी और उनकी यात्रा पर भी पाबंदी होगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि दुनिया भर के देश चरमपंथी गुटों के खिलाफ कदम उठाएं और उनके नाम प्रतिबंध की सूची में शामिल करवाएं। इस प्रस्ताव के तहत सारे देशों को 120 दिनों के अंदर यह भी रिपोर्ट देना होगी कि उन्होंने दाएश के धन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। प्रस्ताव में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून अगले 45 दिनों में दाएश के धन के स्रोतों के बारे में एक रिपोर्ट भी पेश करेंगे। कुछ जानकारों का कहना है कि अब असल चुनौती ये होगी कि इस प्रस्ताव को लागू कैसे किया जाता है, क्योंकि इसी प्रकार का एक प्रस्ताव इस साल फरवरी में भी पारित किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उस पर सभी ने अमल किया हो। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
और अब रुख करते हैं भारत की ओर। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार घेरे में आए हैं, उनके कार्यालय पर सीबीआई का छापा पड़ा है। केंद्र के साथ आम आदमी पार्टी के रिश्तों में खटास बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि छापा केजरीवाल के दफ्तर पर मारा गया है, जबकि सीबीआई इससे इनकार करती है। कल इस विवाद ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब आम आदमी पार्टी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर गंभीर आरोप लगाए। आरोपों में कहा गया है कि जेटली के डीडीसीए यानी दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का चेयरमैन रहते हुए घोटाला हुआ। जेटली ने इन आरोपों को खारिज किया और भारतीय जनता पार्टी भी जेटली के साथ खड़ी नजर आई। कल के दिन भर के घटनाक्रम का ब्यौरा लेकर आए हैं संदीप सोनी।
दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए मामले में बढ़ते विवाद के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए उन पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है। वर्ष 2014-2015 के तथ्यों का हवाला देते हुए अरुण जेटली ने कहा कि अरविंद केजरीवाल उन्हें इस मामले में घसीट नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट प्रशासक की भूमिका वर्ष 2013 में ही छोड़ दी थी। इस पूरे मामले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई से जोड़ते हुए अरुण जेटली ने कहा,
भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए जब रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो केवल एक चारा है कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं, और यही कारण है कि शायद मेरा नाम बार बार वो लेते हैं। अब जहां तक दिल्ली में क्रिकेट का संबंध है, पिछले कई वर्षों से मेरा कोई क्रिकेट से संबंध नहीं है, ना दिल्ली में ना बीसीसीआई में, तो इतने वर्षों बाद जाकर इनको ये विषय क्यों से याद आ गया।
इससे पहले आम आदमी पार्टी ने डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को आड़े हाथों लेकर उन पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी नेता कुमार विश्वास,
14 कंपनियां बनाकर अपने मित्रों अपने संबंधियों को इन्वॉल्व करके साइफनिंग की गई है 1989 से लेकर 2013 तक अध्यक्ष के रूप में और एक वर्ष मुख्य संरक्षक के रूप में। अरुण जेटली जी ने 15 वर्ष इस डीडीसीए का जो दोहन किया है, मुख्यमंत्री के कार्यालय पर रेड हो या एसीबी पर कब्जा हो, इस सब के पीछे केंद्र सरकार के मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा डीडीसीए में अपने कार्यकाल में किए गए भ्रष्टाचार, और अपने प्रश्न में कराए गए भ्रष्टाचार को उजागर ना होने देने की मूल मंशा है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को निराधार बताते हुए अरुण जेटली के प्रति अपना पूरा समर्थन जताया है। कांग्रेस सरकार की कार्रवाई का हवाला देते हुए भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा,
हम ये सार्वजनिक तौर पर कहना चाहते हैं कि पिछली सरकार में कांग्रेस नित यूपीए की अध्यक्षता में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने 21 मार्च 2013 डीडीसीए से संबंधित अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में अरुण जेटली जी का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी फ्रॉड उनकी अध्यक्षता में नहीं हुआ।
उधर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का कहना है कि संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को इस पूरे मामले की पड़ताल करनी चाहिए और पूर्व क्रिकेटर तथा भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद को इस समिति का मुखिया बनाना चाहिए।
जेपीसी की हमने मांग की है, जांच होना चाहिए और जेपीसी में क्योंकि क्रिकेट का संबंध कीर्ति आजाद साहब से है, काम भी करते हैं, खेले भी, क्रिकेट भी खेले हैं, क्रिकेट बोर्ड में भी रहे हैं, तो उन्हीं को चेयरमैन बनाया जाना चाहिए जेपीसी का।
कीर्ति आजाद ने भी डीडीसीए में भ्रष्टाचार होने की बात कही है और दावा किया है कि उन्होंने अरुण जेटली को समय समय पर इस बारे में आगाह किया था। समाचार एजेंसियों के मुताबिक कीर्ति आजाद डीडीसीए में जेटली के कार्यकाल के धुर विरोधी रहे हैं। कीर्ति आजाद ने बीबीसी को बताया कि वो इस मामले में रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखेंगे। रविवार आने में अभी देर है, लेकिन इतना तय है कि बढ़ती सर्दी के बीच दिल्ली में इस मुद्दे पर सियासत लगातार गर्माती रहेगी। संदीप सोनी, बीबीसी दिल्ली।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो विपक्ष के हथकंडों से परेशान न हो। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उन्होंने गुरुवार को अपने निवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक में ये बात कही। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय आया है जब आम आदमी पार्टी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, साथ ही कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के चलते शीतकालीन सत्र में संसद ठीक से नहीं चल पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा कि जो कुछ सरकार कर रही है वो उसे लेकर उत्साहित रहें और विपक्ष के हमलों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष झूठ के आधार पर मुहिम चला रहा है। ये बैठक लगभग 1.5 घंटा चली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों से कहा कि वो सरकार के कामकाज से जुड़े संदेश को लोगों तक पहुंचाने की चुनौती स्वीकार करें। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से यह भी कहा कि वो अपने विभागों की समय समय पर समीक्षा करें, साथ ही उन्होंने सरकार की छवि को बेहतर बनाने के लिए नए नए विचारों पर अमल करने पर जोर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से मुलाकात की। और अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन खबरों पर रहेगी हमारी नज़र।
वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आज भी राजनीति होती रहेगी। आपने जहां बतौर डीडीसी अध्यक्ष जेटली के कार्यकाल में करोड़ों रुपए के घपले का आरोप लगाया है, वहीं केंद्र सरकार और भाजपा खुलकर उनका बचाव कर रही हैं। अभिनेता गजेंद्र चौहान आज से भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के चेयरमैन का कार्यभार संभाल सकते हैं। इस पद पर 6 महीने पहले उनकी नियुक्ति के बाद से संस्थान के बहुत से छात्र उनका विरोध कर रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की मेंस परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। वहीं बॉक्स ऑफिस पर आज दो चर्चित फिल्में बाजीराव मस्तानी और दिलवाले रिलीज हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आज वर्ष के अंत में होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद वो हालिया गोली कांड के पीड़ितों से मिलने के लिए सैन बर्नार्डिनो जाएंगे। इसके बाद उन्हें छुट्टियां मनाने के लिए हवाई द्वीप जाना है। अफ्रीकी देश रवांडा में लोग आज एक अहम जनमत संग्रह में शामिल होंगे। ये जनमत संग्रह एक संविधान संशोधन को लेकर हो रहा है, जिसे मंजूरी मिलने पर राष्ट्रपति पाउल कागामे रवांडा में 2034 तक शासन कर पाएंगे। उधर फीफा की नैतिक समिति आज विश्व फुटबॉल संस्था के निलंबित उपाध्यक्ष मिशेल प्लातिनी के मामले में सुनवाई करेगी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे प्लातिनी इस सुनवाई का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उन्हें इस पर विश्वास नहीं है उनके वकील इस सुनवाई में शामिल होंगे।
और अब समय है एक खास रिपोर्ट का। किसी का निकाह किसी की जिंदगी का रास्ता बन सकता है। शादियां जश्न का निमंत्रण होती हैं, लेकिन नीलोफर की शादी कुछ अलग थी। कैसे एक निकाह एक मजबूर की जिंदगी का रास्ता बना और कैसे नीलोफर की शादी बाकी शादियों से अलग थी, बता रहे हैं रांची से रवि प्रकाश।
इसी महीने की बात है, रांची के मनी टोला की, यहाँ कुवैत के बिजनेसमैन मोहम्मद यूसुफ की बेटी नीलोफर का निकाह इमरान से हो रहा था। जाहिर है शादियों के लिए लोगों को न्योता जाता है, इस निकाह के लिए भी कार्ड छपवाए गए, न्योता भेजा गया, साथ में पीले रंग की एक पर्ची भी। पर्ची पर लिखा था कि मेहमान कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए, अपनी हैसियत और इच्छा के मुताबिक पैसे दान करें, यह रकम पुंदाग निवासी आदिल अंसारी के इलाज के लिए मांगी जा रही। मोहम्मद यूसुफ ने बीबीसी को बताया कि कुवैत से रांची आने पर उन्हें एक एनजीओ से जुड़ी फरीदा नुसरत ने आदिल के बारे में बताया था, तब वह आदिल को देखने उसके घर गए। वहां पता चला कि 17 साल का आदिल हर माह 5000 रुपये की दवा पर जिंदा है, अगर लीवर ट्रांसप्लांट हो जाए तो उसकी जिंदगी बच सकती है। यूसुफ ने बताया,
एक बच्चा जो पुंदाग में रहता है, नाम आदिल अंसारी, उम्र 16 वर्ष, 4 साल पहले उसे लीवर का प्रॉब्लम हुआ था, तब से वह बिस्तर पे पड़ा है। उसे जीने के लिए हर महीने 5000 रुपया महीने की दवा की जरूरत है, जो उसके वालिद के लिए एक मुश्किल काम। अगर हम सब मिलकर उस बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट करवा दे तो बच्चा ठीक हो सकता है। हमने अपनी बेटी की शादी में 2 डोनेशन बॉक्स डाला था, जिसमें 4 से 4.5 लाख रुपए लोगों ने मदद की, लेकिन उतने पैसे में उसका इलाज नहीं हो सकता है।
मोबीन आलम और जिन्नत बानो के 7 संतानों में आदिल इकलौता बेटा है। वह 6ठी क्लास में था तब बीमारी का पता चला। मोबीन ने बताया कि एक दिन अचानक उसे बोलने में दिक्कत हुई, फिर हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया, तब से वह बिस्तर पर पड़ा है। सीएमसी वेलोर के डॉक्टर्स का इलाज कर रहे हैं। मोबीन मुलतब बिहार के जहानाबाद जिले के निवासी हैं। पिछले कई सालों से रांची में रहकर ऑटो चलाते हैं। अल शम्स अलियासीन वेलफेयर सोसाइटी की फरीदा नुसरत ने बताया कि डॉक्टरों ने आदिल को विल्सन नाम की बीमारी बताई है।
तो बच्चे को जो रोग है, तकलीफ है, उसका नाम है विल्सन डिजीज। इस विल्सन डिजीज में बॉडी के अंदर जो कुछ भी कॉपर की मात्रा होती है, वो किसी स्टेज में जाकर के किसी कारण से वो लीवर में आके जमा हो जाती है, वो क्लॉटिंग कर जाती है और लीवर को बिल्कुल बेकार कर देती है। तो उसमें डॉक्टर्स का कहना है कि इसका बस एकमात्र उपाय ही है, या तो ये होल लाइफ दवा खाए या तो फिर अपना लीवर ट्रांसप्लांट करा लें। सब मिल करके इंशाल्लाह इस बच्चे के लिए पैसा जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे और इस बच्चे का हम लोग इलाज कराएंगे, ताकि ये बच्चा फ्यूचर में अपनी सफल जीवन को जी सके।
अब आदिल फिर से ठीक होगा या नहीं, यह भविष्य की बात है, लेकिन इस पहल की चर्चा समाज के हर तबके में हो रही है।
ये थे रांची से रवि प्रकाश। रवि प्रकाश की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। अशोक कुमार स्टूडियो में मौजूद हैं अखबारों के साथ। जी अशोक।
जी पंकज जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कल वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप लगाए हैं, आज के सभी अखबारों में हर तरफ उसी की चर्चा है। और मामला क्रिकेट का है तो सभी अखबारों ने बड़ी दिलचस्प हेडलाइन लगाई है।
क्लीन बोल्ड, हाँ, हिट विकेट सब लगा।
मैं आपको सुनाता हूँ। जनसत्ता कहता है आपकी गुगली, पिच पर जेटली। नवा टाइम्स कहता है आरोपों के चौके छक्के लगे। अमर उजाला ने सुर्खी लगाई भ्रष्टाचार की पिच पर केजरी जेटली के बीच कोटला टेस्ट। और आखिर में सुर्खी है दैनिक जागरण की, जिसने हेडलाइन दी डीडीसीए पर धुआंधार। वहीं दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की क्रिकेट खेलते हुए तस्वीर आप देख रहे हैं, और कैप्शन लगा है दिल्ली के इंडिया गेट पर क्रिकेट खेलते सुंदर पिचाई, इनका सालाना पैकेज 310 करोड़ रुपए है। सालाना पैकेज यानी एक साल का उनका वेतन 310 करोड़।
वो भी क्रिकेट खेलते ही दिखाए हैं। अच्छा है।
वहीं अमर उजाला ने पिचाई के इस बयान को प्रमुखता दी है कि एंड्रॉइड के अब जो नए वर्जन आएंगे उनके नाम पेड़ा नान खटाई जैसी भारतीय मिठाइयों के नाम पर होगा।
बहुत अच्छे,
बहुत दिलचस्प खबर है। अगली खबर पूर्वोत्तर की है, जो सभी अखबारों में छाई हुई है, और खबर है अरुणाचल प्रदेश से, जिस तरह वहाँ सियासी उठा पटक जारी है। नई दुनिया की सुर्खी है अरुणाचल प्रदेश में संवैधानिक संकट, मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित, पॉल को चुना गया मुख्यमंत्री। इस पर जागरण ने लिखा है अरुणाचल प्रदेश में सियासी ड्रामा। साथ ही ये खबर भी दी है कि हाई कोर्ट ने इस घटनाक्रम को लेकर जो तमाम फैसले हैं उन पर रोक लगा दी है। और दैनिक जागरण में इसके साथ साथ एक ग्राफिक के जरिए समझाया गया है कि कुल सदस्यों की संख्या 41 है अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में, और बहुमत के लिए बहुमत के लिए जो सदस्य नहीं, कांग्रेस के पास जो 41 सदस्य हैं जिनमें बागी भी शामिल हैं, और बहुमत के लिए कुल सदस्यों चाहिए 31 सदस्य सरकार बनाने के लिए।
लेकिन बताइए हाई कोर्ट को दखल देना,
हाई कोर्ट को दखल देना
पड़ा, राज्यपाल पे भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष मान नहीं रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है राजनीति,
और इधर केंद्र की राजनीति में
कहीं ना कहीं केंद्र और आपके बीच जो झगड़ा चल रहा है उसमें ये खबर दब रही है
उसके। बिल्कुल। इसके अलावा जनसत्ता की खबर है, रामदर्श मिश्र समेत 23 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
अमर उजाला के बीच ये पुरस्कार देने की खबर है, श्रोता ध्यान दे।
इस साल तो खूब चर्चा हुई है साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने के लिए, हमेशा चर्चा में रहा, लेकिन अब पुरस्कार जिनको नया मिलेगा उनकी घोषणा हुई है। अमर उजाला लिखता है, रामदर्श मिश्र को उनके कविता संग्रह आग की हंसी के लिए सम्मानित किया जाएगा। वहीं जनसत्ता के पहले पन्ने पर खबर है, मंदी से उबरे अमेरिका ने 7 साल में बढ़ाई अपनी ब्याज दर। और जैसा कि आपको पता है आज 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, इसी की खबर अमर उजाला में सबसे नीचे लगी है, दिलवाले को सफल बनाना शाहरुख खान के लिए चुनौती है। अखबार कहता है कि चुनौती इसलिए है क्योंकि दिल्ली यूपी में औसत से कम कलेक्शन करती हैं किंग खान की फिल्में। और दूसरी बड़ी फिल्में जो है संजय लीला भंसाली की फिल्म है बाजीराव मस्तानी, उस पर खास तौर से नज़र रहेगी। इसके अलावा एक खबर जनसत्ता की है, विशेष खबर है, जिसमें हेडलाइन लगाई है, उत्तर प्रदेश में ऐसे तो नहीं बचेंगी बेटियां। ये कन्या भ्रूण की जिस तरह हत्या के मामले आते हैं उसको लेकर ये खबर है मेरठ की, जहां लिंग परीक्षण के आरोपों में समाजवादी पार्टी के नेता की एक बहन और उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। अखबार लिखता है, हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की एक टीम ने मेरठ के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारकर लिंग परीक्षण करते हुए समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता की बहन और उसके पति को गिरफ्तार किया है।
बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार आपका। और अब समय है खेल की खबरों का।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। आईसीसी T20 विश्व कप के सिर्फ 2 केंद्रों नागपुर और धर्मशाला को लगभग आधे मैचों की मेजबानी सौंपे जाने को लेकर BCCI के अंदर तनातनी बन गई है। भारत में इस टूर्नामेंट का आयोजन अगले साल 8 मार्च से 3 अप्रैल के बीच होना है और मैचों के आवंटन में बोर्ड अध्यक्ष और सचिव के केंद्रों का दबदबा नजर आ रहा है। इस T20 विश्व कप के 35 में से सबसे ज्यादा 9 मैचों के आयोजन की जिम्मेदारी नागपुर को दी गई है। नागपुर BCCI और ICC के प्रमुख शशांक मनोहर का गृह नगर है। इसी तरह धर्मशाला को 8 मैचों का आयोजन सौंपा गया है जो BCCI सचिव अनुराग ठाकुर का गृह नगर है। इन 8 मैचों में भारत और पाकिस्तान के बीच 19 मार्च को होने वाला अहम मैच भी शामिल है। विश्व कप के मैच कुल 7 केंद्रों पर आयोजित किए जाने हैं। नागपुर और धर्मशाला में 17 मैच होंगे जबकि दूसरे 5 केंद्रों पर कुल 18 मैचों का आयोजन होना है। विश्व कप का खिताबी मुकाबला ईडन गार्डन्स पर होगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन 20 शहरों में होता रहा है लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 7 शहरों का चयन किया गया है। हैरानी की बात ये भी है कि भारत पाकिस्तान जैसे अहम मैच की जिम्मेदारी धर्मशाला को दी गई है जिसकी दर्शक क्षमता मात्र 23,000 है। और अब बात टेनिस की। विश्व के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी ब्रिटेन के एंडी मरे अगले साल होने वाले ऑस्ट्रेलिया ओपन से हट सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन अगले साल 18 से 31 जनवरी तक खेला जाना है। इस दौरान मरे की पत्नी किम अपने पहले बच्चे को जन्म दे सकती हैं। मरे ने पिछले महीने ही बेल्जियम को हराकर अपने देश को डेविस कप विजेता बनाया है। इस साल एक भी ग्रैंड स्लैम नहीं जीतने वाले मरे का ध्यान हालांकि अगले साल रियो में होने वाले ओलंपिक्स पर है। मरे ओलंपिक्स में मेन सिंगल्स के गत विजेता हैं।
ओलंपिक्स इज बिग ऑब्वियसली, आई मीन यू डोंट मे बी गेट द चांस टू प्ले 3 पोटेंशियली 4 ओलंपिक्स इन योर करियर इफ यू आर लकी। दिस विल बी माय थर्ड वन इन रियो।
ओलंपिक बड़ी बात है। बहुत कम होता है जब आपको अपने करियर में 3 या 4 ओलंपिक खेलने को मिले। रियो मेरा 3रा ओलंपिक है। मेरे ख्याल से ये शानदार होगा। हालांकि ये विंबलडन के ठीक बाद अहम मौके पर आ रहा है, इसलिए तैयारियां अहम होंगी। ओलंपिक अगले साल सभी खिलाड़ियों का लक्ष्य होगा।
खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और कार्यक्रम के अंत में सुनिए प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। अमरीकी संसद की एक अहम समिति ने पाकिस्तान सरकार से उन मदरसों को बंद करने की मांग की है जो चरमपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। यूरोपीय नेताओं ने माना है कि प्रवासी संकट से निपटने में वो तत्परता नहीं दिखा पाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों ने आम राय से एक प्रस्ताव मंजूर किया है जिसका मकसद तथाकथित इस्लामिक स्टेट की आर्थिक मदद के स्रोतों को रोकना है। विपक्ष के हमलों के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो विपक्ष के हथकंडों से परेशान ना हो। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, पंकज प्रियदर्शी और अशोक कुमार को अनुमति दीजिए। अब से ठीक एक घंटे बाद विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। तब तक bbchindi.com है आपके साथ। नमस्कार।